आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में महिलाओं की कृषि और खाद्य श्रृंखला पर 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुवाहाटी से देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दमोह में 400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले चरण के कार्यक्रम की घोषणा की है, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 10 शहरों में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगी। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। ये आयोजन नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से देश भर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि प्रधानमंत्री डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। श्री चौहान ने इस योजना को समृद्धि, सशक्तिकरण और सुशासन का संगम बताते हुए कहा कि राशि किसानों के आत्मबल को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुल अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2026 पेश करेंगी। कल लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाया।
संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान रखा।
राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों से तमिलनाडु में बंधुआ बनाए गए बैतूल और हरदा के 24 श्रमिकों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित घर वापस लाया गया है। कल रात बैतूल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कलेक्टर एसपी ने इन श्रमिकों का स्वागत किया। इन श्रमिकों को तमिलनाडु के इरोड जिले में बंधक बनाकर रखा गया था, जिन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जिला प्रशासन के समन्वय से मुक्त कराया गया। सरकार ने पुनर्वास के लिए प्रत्येक श्रमिक को 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दमोह के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 405 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगवाने वाली बेटियों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए माताओं बहनों से टीकाकरण के प्रति जागरूक होने की अपील की। पेश है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिल रही है। दमोह जिले के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेटियों और महिलाओं के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कई महत्वपूर्ण सौगातें दी और घोषणाएं की। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 405 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की लागत के 13 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने HPV वैक्सीन लगवाने वाली 8 बेटियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।
हमारे यहाँ रास्ते खुलेंगे, रोजगार
साथ ही उन्होंने हटाकर नाम शिवकाशी करने की भी घोषणा की। इसी के साथ नया आईटीआई भवन, नगर पालिका भवन और गीता भवन निर्माण, एमएलबी स्कूल में ऑडिटोरियम, पटेरा में नया महाविद्यालय, हटा महाविद्यालय में कृषि उद्यानिकी और पशुपालन संख्याएं शुरू करने की घोषणा की। निश्चित ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लिए जा रहे ये निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक परिस्थितियों के चलते अब प्रदेश में घरेलू गैस की रिफिलिंग बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही स्वीकार की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक संस्थानों जैसे होटल और फैक्ट्रियों को एलपीजी की सप्लाई नहीं की जाएगी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिल सके। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे तेल कंपनियों के साथ मिलकर स्टॉक की निगरानी करें और जमाखोरी करने वाले वितरकों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के मामलों का निपटारा भारी छूट के साथ किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस अवसर पर लाभ उठाएं। 10 लाख रुपए तक के सिविल दायित्व वाले मामलों में प्री लिटिगेशन स्तर पर मूल राशि में 30% और लिटिगेशन स्तर पर 20% की छूट दी जाएगी। साथ ही दोनों स्तरों पर ब्याज में 100% की पूरी छूट मिलेगी। ये योजना घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू है। भोपाल के अलरशीद चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आयुष्मान भारत निरामयम योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा की गई जांच में अस्पताल द्वारा पैकेजों के दुरुपयोग, मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती रखने और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस अस्पताल पर जुर्माना लगाया जा चुका था, लेकिन सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए चुनाव तिथियां घोषित होने के बाद ही पूरे टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। टूर्नामेंट के पहले चरण में 10 स्थानों बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, नई चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। हालांकि बेंगलुरु में प्रस्तावित मैच कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की मंजूरी के अधीन होंगे। संक्षेप में, एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2026 में भारतीय टीम ने कल शाम हैदराबाद में पूल बी के मुकाबले में वेल्स को 4-1 से हरा दिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज झाबुआ जिले के प्रवास पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरमालवा जिले के प्रवास पर हैं। वे नलखेड़ा पहुंचकर प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सतना में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने समीक्षा बैठक में ग्रीष्मकाल के दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित प्रबंध करने के निर्देश दिए। इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के लिए विशेष मुहिम के तहत 35 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 105 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नर्मदापुरम में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई। अशोकनगर में ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जबलपुर में कल से 3 दिवसीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल सह कृषि मेले की शुरुआत की गई। मंदसौर में गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 66,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। डिंडौरी के विकासखंड समनापुर में मातृशक्ति संकुल स्तरीय संगठन द्वारा संचालित हमर आजीविका दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।